ओम शांति। आज हम जहां पर सब लोग बैठे हैं उस संस्था का, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, एक सिंगल व्यक्ति से जो संबंध है, वास्तव में वह प्रजापिता ब्रह्मा बाबा वन मैन इंस्टीट्यूशन, कैसे बाबा ने यह संस्था की स्थापना की, किस प्रकार से यह संस्था ग्रो की, उसका संक्षिप्त इतिहास आज हम देखेंगे। यह कहानी शुरू होती है आज से लगभग 80 वर्ष पूर्व, 1936 से, और जिनका आप देख रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा चित्र, यह इनकी जीवन कहानी, इस संस्था का इतिहास, दोनों एक दूसरे से पूरी तरह ओतप्रोत है। आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लगभग 140 देशों में विभिन्न सेवा केंद्र हैं, यह फैला हुआ है पांचों कॉन्टिनेंट्स में। बाबा भी साधारण व्यक्ति थे हम सबकी तरह, उनका नाम था लेखराज, हैदराबाद सिंध, जो वर्तमान समय पाकिस्तान का हिस्सा है, उस समय अखंड भारत था, और सिंध में दादा कहा जाता है एल्डर ब्रदर को, तो सब उन्हें से दादा लेखराज जी या लखीराज बाबू के नाम से जाना करते थे। बाबा का भी एक परिवार था, जैसे सबका परिवार होता है, उसमें दो पुत्र और तीन पुत्रियां, वह अपनी पत्नी के साथ बहुत सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। बाबा लौकिक परिवार के साथ हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, धन धान्य से परिपूर्ण सब होते हुए भी बाबा दान पुण्य आदि बहुत किया करते थे, और उनके घर से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं जाता था। यह सब होते हुए भी बाबा को सदैव परमपिता परमात्मा की खोज रहती थी, एक सत्य की खोज, भगवान कौन है, क्या परिचय है उसका, और इस में सदा वह डूबे रहते थे। और इस प्रोसेस में बाबा ने लगभग 12 गुरु भी किए, एक के बाद एक गुरु। एक बार ऐसे ही बाबा बैठे हुए थे, तो बाबा को एकाएक ही विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। विष्णु चतुर्भुज उनके सम्मुख आए, वह दिव्य मूरत देखकर बाबा एकदम बहुत प्रसन्न हो गए, और विष्णु चतुर्भुज से उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे विष्णु चतुर्भुज कह रहे हैं, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, मैं चतुर्भुज हूँ, तुम भी मेरे ही स्वरूप हो। ऐसा बाबा को अनुभव हुआ कि विष्णु चतुर्भुज से ऐसी आवाज आ रही है। बस यह बाबा का प्रथम जो साक्षात्कार था, उससे उसने बाबा को अंदर तक जैसे प्रकाशित कर दिया। इसके बाद बाबा को एक दूसरा साक्षात्कार हुआ इस कलयुगी सृष्टि के परिवर्तन का। बाबा ने देखा यह जो सृष्टि है, यह सृष्टि एक तरफ एटॉमिक वार बाबा ने देखी, अणु युद्ध चल रहा है भयानक विभिन्न देशों के बीच में, और बहुत मानवता, सृष्टि, मनुष्य जैसे नष्ट होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ बाबा ने देखा सिविल वार, कुछ देशों में विभिन्न धर्म संप्रदायों के बीच में सिविल वार हो रही है, वो भी खूनी नाहक खेल हो रहा है, और उसमें भारत भी बाबा ने देखा किस प्रकार से सिविल वार में चारों तरफ खून की नदियां बह रही हैं। और इस विश्व परिवर्तन के तीसरे दृश्य में बाबा ने देखा प्राकृतिक आपदाओं का, कहीं अर्थक्वेक आ रहे हैं, कहीं फ्लड है, कहीं सूखा है, और इस प्रकार से कहीं सुनामी आदि देख करके चारों तरफ विनाश का वातावरण, हाहाकार मचा हुआ है। और बस ये हाहाकार देख करके ही जैसे बाबा के मुख से एकदम बस शब्द निकल गए, हे प्रभु बस बस कीजिए, प्रभु बस कीजिए। और बस ये बाबा की आंखों से जैसे आंसू बहने लगे, गीता प्रसिद्ध अर्जुन की भांति। और यह सब दृश्य देखते हुए बाबा ने देखा किस प्रकार से ये एक तरफ इस सृष्टि के परिवर्तन का, विनाश का दृश्य है, और दूसरी तरफ नई सृष्टि की स्थापना का दृश्य। बाबा ने देखा एक ऐसे सितारों की सी दुनिया है जहां आत्माएं निवास करती हैं, जिसे परम धाम कहा जाता है, वहां से आत्माएं आ रही हैं, और वो आत्माएं जो सृष्टि पर जब आती हैं, सितारे जैसी आत्माएं, कोई राजकुमार बन जाती है, कोई राजकुमारी बन जाती है, और इस प्रकार से बस वो आपस में खेल पाल कर रहे हैं। ऐसी सुखमय दुनिया जहां दुख का तो नामो निशानी नहीं, और उस दुख सुख की दुनिया को देखने में बाबा इतने तल्लीन हो गए, ऐसा बाबा को महसूस हो रहा था ये कौन सी दुनिया है। परमपिता परमात्मा ने बाबा को ये दृश्य दिखाया सतयुगी दुनिया का, कैसे आत्माएं आ रही हैं, विभिन्न राजकुमार राजकुमारियों के रूप में परिवर्तित हो रही हैं, कैसी दुनिया है, प्रकृति दासी है, पांचों तत्व जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश सब प्रकार से उनमें सुख ही सुख हर चीज में। तो एक तरफ बाबा ने विनाश का साक्षात्कार किया, दूसरी तरफ नई सृष्टि की स्थापना का साक्षात्कार किया। तो ये दोनों देख करके बाबा की तो कुछ समझ में नहीं आया। तो ये और जब यह सब चल रहा था तो बाबा के मुख से, बाबा के कानों में एक आवाज पड़ी। हाँ, जब ये नई दुनिया देखने में बाबा तल्लीन थे साक्षात्कार में, बाबा के कानों में आवाज पड़ी, ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, ऐसी सृष्टि तुम्हें बनानी है। बस बाबा के कानों में आवाज पड़ी। थोड़ी देर बाद बाबा जैसे ध्यान से नीचे उतरे, साक्षात्कार समाप्त हुआ, बाबा ने देखा बाबा के मुंह से निकला वो कौन था, किसकी आवाज थी, वो क्या कह रहा था कि तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है, मैं कैसे बनाऊंगा, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, क्योंकि बाबा को उसकी कुछ भी मेथोडोलॉजी कुछ भी बात मालूम नहीं थी। केवल परमात्मा ने उनको डायरेक्शन दिया पहली बार, तुम ये इस नई सृष्टि के निमित्त हो, तुम्हें ऐसी सृष्टि बनानी है। और इस प्रकार से बाबा ने उनका नाम भी बदल के, जो लेखराज था दादा लेखराज, तब बाबा ने उनका नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा को नई सृष्टि का क्रिएटर कहते हैं। इस प्रकार से बाबा यह सब दृश्य तो देखा, फिर भी बाबा भगवान की तलाश में थे, परमात्मा। और जैसा आपको बताया गया, बाबा ने इस प्रोसेस में भगवान को पाने में अनेकानेक गुरु भी किए। एक बार गुरु को निमंत्रण देके बाबा ने अपने यहां बुलाया हुआ था। गुरु के प्रति बाबा की बहुत अगाध श्रद्धा थी। गुरु का प्रवचन चल रहा था और गुरु के प्रवचन में बाबा बैठे हुए थे। एकाएक ही बाबा को कुछ अंदर अनुभूति हुई, बाबा उठकर अपने कमरे की तरफ गए, और बाबा के पीछे पीछे बाबा की पुत्र वधू वह भी गई, और उसने देखा बस बाबा अपने कमरे में गए और कमरे में जाकर के बाबा जैसे बैठ गए और देखते ही देखते बाबा का कमरा पूरा जैसे लाल प्रकाश से प्रकाशित हो गया। बाबा का मुखड़ा भी पूरा लाल प्रकाश से प्रकाशित हो गया और बस ऐसा लग रहा था कि कोई दूसरा ही बाबा के अंदर बाबा के देह में तन में प्रवेश किया है। और तब मुख तो ब्रह्मा बाबा का था और तब एक आवाज उन्हें सुनाई दी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ब्रह्मा बाबा के मुख के द्वारा स्वयं सृष्टि के रचयिता परमपिता परमात्मा ने अपना परिचय दिया कि मैं शिव हूं, निजानंद स्वरूप हूं, मेरा नाम शिव है, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं प्रकाश स्वरूप हूं। तो ये पहली बार धरती पर इस सृष्टि पर परमपिता परमात्मा की प्रवेशता थी। अब परमात्मा तो है निराकार ज्योतिर्स्वरूप बिंदी स्वरूप, कैसे वो बोलेगा, किसी मुख का आधार लेगा, तो ब्रह्मा मुख का बाबा ने शिव बाबा ने पहली बार आधार लेके ब्रह्मा के द्वारा अपना परिचय दिया कि मैं शिव हूं, मैं कल्याणकारी हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। तो ये परमपिता परमात्मा की पहली पहली दिव्य प्रवेशता थी। और इस दिव्य प्रवेशता के साथ साथ और धीरे धीरे बाबा ज्ञान के राज खोलते चले गए। नेचुरली एक प्रश्न हो सकता है कि उन्हीं का तन ही परमपिता परमात्मा शिव ने क्यों चुना, आपका मेरा या किसी का भी कोई और तन क्यों नहीं चुन लिया। तो वो भी परमपिता परमात्मा ने राज बताया कि ये जो आत्मा है दादा लेखराज, ये ही वास्तव में श्री कृष्ण की आत्मा है, ये अपने अंतिम जन्म में इस समय दादा लेखराज के रूप में है और इसी का प्रथम जन्म श्री कृष्ण के रूप में हुआ और इस कारण से परमात्मा ने उसी तन को चुना आदि सो अंत में। तो इस प्रकार से ये परमपिता परमात्मा की पहली प्रवेशता और परमात्मा ने अपना परिचय देना प्रारंभ किया। धीरे धीरे बहुत लोग सत्संग में आने लगे, बाबा के यहां सत्संग शुरू हुआ और जो भी आता था बाबा को देखता था, बस बाबा को देखता देखता उसे बाबा की जगह श्री कृष्ण दिखाई देने लगते थे, कभी नारायण दिखाई देने लगते थे। चारों तरफ यह वातावरण बन गया, ये बात फैल गई कि यहां तो भगवान है, भगवान आते हैं, जिसका जो भक्त होता था उसको वही साक्षात्कार होता था, लेकिन ब्रह्मा बाबा चूंकि श्री कृष्ण की आत्मा थे तो इस कारण से ब्रह्मा बाबा के द्वारा हरेक आने वाले को या तो कृष्ण का या नारायण का इस प्रकार से साक्षात्कार होता था। उन्हीं आने वालों में एक बहन थी, कुमारी थी, नाम था उनका ओम राधे, बहुत ही ब्रिलियंट शार्प माइंडेड, और उनका वो सितार बजाने में भी बड़ी प्रवीण थी और ज्ञान के द्वारा वह सब आत्माओं का उन्होंने दिल जीत लिया। हालांकि उनसे ज्यादा आयु वाले भी थे लेकिन परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा उनको नाम दिया जगदम्बा मातेश्वरी। जैसे दादा लेखराज का नाम परिवर्तित होके प्रजापिता ब्रह्मा बाबा पड़ा, ऐसे इन ओम राधे का नाम परिवर्तित होके जगदम्बा सरस्वती। और इस प्रकार से यह आत्मा जैसे क्लास का मॉनिटर होती है, और उन अवस्था में एक और बहन आई जिनका दादी प्रकाशमणि, युवा अवस्था का ये चित्र है, जो बाद में इस इंस्टीट्यूशन की चीफ भी बनी। और इस प्रकार से लगभग उस समय 300-400 कुमारी कुमारियां माताएं कन्याएं बहनें अधिकतर भाई भी थे और उनके द्वारा यह सत्संग शुरू हुआ। तो बाबा ने तब एक बोर्डिंग स्कूल खोला जिनमें ये सब बहने पढ़ते थे और वो बोर्डिंग स्कूल में पूरा सब प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, लौकिक और अलौकिक। ये बाबा का अलौकिक परिवार है और साथ ही साथ ये सब बहनें जो आप देख रहे हैं इतनी यंग एज में जो वर्तमान समय दादियों के रूप में हैं। आज दादी जी भी देखा आपने, दादी जानकी जी, इनसे पहले और भी दादी प्रकाशमणि जी, यह सब इसी आयु एज ग्रुप के थे। यह लगभग 80 वर्ष पहले की 1936-37 की बात है। तो इस प्रकार से यह सब शुरू हुआ। बाबा इन बहनों को कराची में ये चल रहा था और वहाँ क्लिफ्टन सी बीच वहाँ पर भी ले जाते थे, एक्सरसाइज भी कराते थे, लेकिन अधिक बल होता था मेंटल एक्सरसाइज पर कि मन को कैसे हम नियंत्रण में रखें, मन हमारा और शरीर के साथ साथ ये मन की एक्सरसाइज। तो इस प्रकार से बाबा और मामा इनके द्वारा इस संस्था की स्थापना हुई। तो सबसे पहली विजडम तो ब्रह्मा बाबा की यही थी, उन्होंने परमपिता परमात्मा को पहचान करके सबसे पहले अपना संपूर्ण चल अचल संपत्ति एक ट्रस्ट बनाया, कन्याओं माताओं का उनके नाम कर दी और उसके बाद से बाबा ने जैसे कभी भी धन को हाथ नहीं लगाया। तो 1936 से लेकर लगभग 1950 तक कराची में यह तपस्या की इन सब माताओं कन्याओं बहनों ने, और अधिकतर वो थे, भाई लोग भी थे लेकिन मेजोरिटी इसमें बहनें थीं। और 14 साल तक ये तपस्या की उन्होंने, ज्ञान योग तपस्या, और इस प्रकार से अपनी आत्मा को धीरे धीरे पावन बनाने का पुरुषार्थ किया। फिर परमपिता उसके बाद 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो आपको मालूम है इंडिया डिवाइड हुआ, इंडिया पाकिस्तान में कितना खूने नाहक खेल हुआ, चारों तरफ खून खराबा। तब परमपिता परमात्मा का आदेश हुआ कि आप यहां से शिफ्ट करो और भारत में जाओ। अब वहां के पाकिस्तान गवर्नमेंट वगैरह उन्होंने बहुत सुविधाएं सब दिया हुआ था, भले मेजोरिटी वो मुस्लिम कंट्री था लेकिन ये 3 साल तक 1947 के बाद ये पूरा ग्रुप 300-400 का वहां पर रहा, किसी का कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ। वो कहा करते थे ये तो भगवान के दूत हैं, पैगंबर हैं और इनके प्रति बहुत ही श्रद्धा थी, लेकिन परमात्मा का आदेश था कि यहां से शिफ्ट होके जाना है। तो एक ग्रुप आया और उसने यहां भारत में सर्वे करके ये माउंट आबू चुना, क्योंकि माउंट आबू एक ऐसी पहाड़ी जो कि आध्यात्मिक स्थल भी है और एकांत का स्थल भी है, और इन्हें मुख्य रीति से तपस्या करने के लिए नई सृष्टि की स्थापना के लिए एक ऐसे ही स्थल की जरूरत थी जहां एकांत में बैठ के वो ज्ञान योग तपस्या आदि कर सके। तो इस कारण से वहां कराची से भारत आने की तैयारी हुई, ये शिप के द्वारा ये वहां से आए और जामनगर के पास वहां पर जामनगर तक आए। ये जहाज में बैठे हुए सारे के सारा ग्रुप आप देख रहे हैं किस प्रकार से शिफ्ट होते हुए आ रहे हैं, और उसके बाद वहां से माउंट आबू तक, आबू रोड तक ट्रेन में आए। तो देख रहे हैं आप कितना एज ग्रुप, बिल्कुल सब छोटे एज के ही यह सब बहनें, और 300-400 का ग्रुप ऐसा था। तो ये पूरा हेडक्वार्टर वहां से शिफ्ट होकर के ये आबू में आया, माउंट आबू में, और ये आप देख रहे हैं आबू रोड स्टेशन पर आबू में आके। और यहाँ पर फिर इनका कई, शुरू में तो कुछ स्थान किराए पर ही लिए गए लेकिन धीरे धीरे पांडव भवन माउंट आबू में अपना स्थान बना, और इस प्रकार से यह मम्मा बाबा यज्ञ के पालनहार, पूरे यज्ञ की स्थापना हुई, यज्ञ की पालना का यह पूरा का पूरा कार्य हुआ। तो अगर कोई विजडम का देखें तो सबसे पहले तो ईश्वर को पहचाना, ईश्वर के प्रति समर्पित हुए और ईश्वर की एक एक आज्ञा को पालन करते हुए यह यज्ञ की स्थापना हुई, और यज्ञ की स्थापना करते हुए आगे बढ़ते चले गए। आप देख रहे हैं किस प्रकार से बाबा ने पालना की, और हर बात में बाबा की ज्ञान भरा हुआ होता था। फूल होता था, बाबा कहते देखो ये तो जड़ फूल है, फिर भी कितना खुशबू है। आप सब आत्माएं चैतन्य फूल हो, आप सबको फूलों की तरह बनना है। गुलाब का फूल होता है, चाहे कांटे में भी रहता है लेकिन अपनी खुशबू फैलाता है। इसी प्रकार से आपको रहना इस दुनिया में ही है, भले विपरीत परिस्थितियां भी जीवन में आएंगी, कांटे आएंगे, लेकिन उनके बीच रहते हुए भी आपको सदा खुशबूदार महकदार फूल बनना है, आदि आदि। और इस प्रकार से अलग अलग बहनें, जैसे एल्डर ब्रदर को, बड़े भाई को दादा कहते हैं सिंध में, ऐसे ही जो बड़ी बहन उनको दादी कहते हैं। तो एक दादी मनोर दादी के साथ ये फोटो है, और ये आप देख रहे हैं बाबा किस प्रकार से यज्ञवत्सों के साथ अपना, कई बार बाबा टूर पर भी जाते थे आबू से बाहर। यह अलग अलग स्थान का कुछ टूर का है, लखनऊ में मामा का स्वागत, कानपुर में, आदि आदि अलग अलग स्थानों पर। इस ये जो नीचे बैठे हुए ये दादी प्रकाशमणि जी हैं। तो बाबा जब थे 18 जनवरी 1969 को बाबा ने देह त्याग किया था, तो उसके बाद से ये दादी प्रकाशमणि ही चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज बने, और 2007 तक, 1969 से लेकर 2007 तक, इतने बड़े पीरियड तक, लगभग 38 वर्ष तक वो चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज रहे। तो ये किस प्रकार से बाबा विशेष ये अभ्यास कराते थे, आप सबको विदेही बनना है, अशरीरी बनना है। आप सब इस शरीर के अंदर वास्तव में आप आत्मा हो, शरीर में आत्मा नहीं, बल्कि यह समझना चाहिए कि मुझ आत्मा ने यह शरीर धारण किया है और इस शरीर के द्वारा मैं कर्म कर रही हूं। इन आंखों के द्वारा देखने वाली मैं चैतन्य सत्ता आत्मा हूं, इन कानों के द्वारा मैं आत्मा सुनती हूं, ये सब मेरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन वास्तव में मैं आत्मा हूं और आत्मा इस देह के द्वारा कर्म कर रही है, अपना पार्ट बजा रही है। इस प्रकार से मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी, ये चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, जैसे फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कहेंगे, और इन्होंने पूरे यज्ञ की पालना की अप टू 1965। 24 जून 1965 को ममा ने देह त्याग किया यही माउंट आबू में, और जब देह त्याग किया यहाँ पर मातेश्वरी ने, तो भी बाबा ने बहुत ऐसी स्थिति सारी बच्चों की बनाए रखी कि देखो ये तो आत्मा ने जैसे अपना एक पुराना वस्त्र बदल करके नया वस्त्र लेने की तैयारी की है। वस्त्र बदलते हैं, नया वस्त्र लेते हैं, खुशी होती है, कोई दुख की बात नहीं, उसमें रोना थोड़ी होता है। और इस प्रकार से बाबा ने इन सब पूरा यज्ञ उसको इतना पक्का किया, इतना बड़ा किया कि हर एक मामा के बिछुड़ने का अंदर में तो थोड़ा सा उसकी फीलिंग थी, लेकिन वो हर एक ने फिर भी अपना कंपोज बना के रखा और किसी भी प्रकार की दुख अशांति का वातावरण नहीं हुआ। और इस प्रकार से यह यज्ञ आगे बढ़ता गया, और तब बाबा ने मामा की जगह हमारी दो मुख्य बहनों को इसमें यहाँ पर अपॉइंट किया मामा का कार्यभार देखने के लिए। ये है दीदी मनमोहनी जी, आप में से काफी भाई बहने मनमोहनी वन में रुके हुए हैं ना, वो इन्हीं के नाम पर ही पड़ा है। ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी मामा के बाद, ये और दादी प्रकाशमणि जी, इन दोनों ने मिलकर के सारा कार्यभार संभाला, ये दीदी मनमोहनी जी, उन्हीं की स्मृति में ये मनमोहनी वन बना हुआ है, आप देख रहे हैं। और इस प्रकार से ये मनमोहनी वन ये बना बाद में, ये तो दीदी मनमोहनी जी और दादी प्रकाशमणि जी, आप दोनों ने मिलकर अप टू सम 1982 तक, ये दीदी मनमोहनी जी 1982 तक थे, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को बहुत बहुत आगे बढ़ाया। और उस दौरान बहुत सारे हमारे ब्रांचेस की स्थापना हुई भारत में और भारत के बाहर भी। हमारा पहला डेलीगेशन विदेश में 1976-4 में गया और उस डेलीगेशन के बाद विदेशों में भी हमारी ब्रांचेस खुलनी आरंभ हो गई। ये बाबा के साथ जो भी ग्रुप आते थे, ब्रांचेस खुलते थे, वहां से बाबा के उनसे मिलने के लिए आते थे और भगवान को बाबा से मिल करके एक अजीब ही सुखद स्मृति वो लेकर जाते थे। बाबा ने कैसे पालना की एक एक बच्चे को, वो पालना की ये कुछ चित्र आप देख रहे हैं किस प्रकार से बाबा एक एक बच्चे को माता पिता, अलौकिक माता पिता की भासना देते थे और बस यही बताते थे कि सबका मालिक तो एक परमात्मा ही है। उस समय ये ईमेल और इंटरनेट आदि तो होते नहीं थे, 1960s वगैरह की बात है, तो बाबा एक एक बच्चों को भी जो भी होता था पत्र लिखते थे और पत्र बच्चों के आते थे, बाबा उनका रिस्पॉन्ड देते थे। और ये पत्र भी अद्भुत, ये देखिए एक पत्र है, ये लाल लाल अक्षरों में सिंधी में बाबा पत्र लिखते थे और उसमें, अब सिंधी तो सब जानते नहीं तो उसके बीच की लाइनों में स्पेस में हिंदी में उसका अनुवाद करके लिखा जाता था और इस प्रकार से सब पढ़ा करते थे। मुझे भी ये सौभाग्य मिला है बाबा के साथ रहने का और बाबा से पत्र व्यवहार करने का। और ये आप में से काफी गए होंगे या कल आपका जाने का दिन है माउंट आबू, तो पांडव भवन में जाएंगे तो वो चार धाम वहां भी करेंगे, जैसे भक्ति के चार धाम प्रसिद्ध हैं तो बाबा की झोपड़ी है वहां पर, ये देखेंगे जहां बैठ के अधिकतर बाबा तपस्या किया करते थे, एकांत में पत्र लिखा करते थे, वो आप उसका अवलोकन करेंगे। ये हिस्ट्री हॉल है जो वहां का क्लासरूम है जहां पर बैठ के बाबा क्लास कराया करते थे वो, साथ ही साथ ये हिस्ट्री हॉल मधुबन में जाएंगे आप वहां देखेंगे। फिर बाबा का कमरा तो अभी तो थोड़ा बड़ा बनाया गया है, नहीं तो बहुत ही छोटा, एक 10x8 का, 10x10 का जैसे छोटा सा रूम था, एक तरफ एक चारपाई पड़ी होती थी, एक तरफ गद्दा पड़ा होता था जिस पर बाबा बच्चों से मिलते थे और प्रसाद खिलाते थे, और बहुत ही छोटा लेकिन भगवान से बाबा से मिल करके ऐसी अनुभूति होती थी, दिल एकदम गदगद हो जाता था और ऐसी अनुभूति होती थी कि बस जैसे जीवन की सब चीजें हमने प्राप्त कर ली। और इस प्रकार से समय गुजरता रहा और बाबा ने भी 18 जनवरी 1969 में अपना देह त्याग किया और बाबा अव्यक्त हो गए, यानी व्यक्त देह को त्याग करके बाबा अशरीरी हो गए। और उन्हीं की स्मृति में एक वहां पर शांति स्तंभ बनाया गया है, वो भी आप वहां पर देखेंगे। तो इस प्रकार से ये चार धाम हैं, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा और बाबा की झोपड़ी। पांडव भवन में कल आप जाएंगे या उससे पहले भी हो सकता है कोई हो आए हो, इन चार को आप वहां पर देखेंगे। वहां का वातावरण ऐसा है, इतना स्पिरिचुअली चार्ज्ड वातावरण, आप जाएंगे बाबा के कमरे में बैठेंगे, शांति स्तंभ पे जाएंगे, बस जो भी मनोकामना हो, भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, तो मन के अंदर जो विष वो आप देखेंगे, शुद्ध शुभ चीज होगी, शुभ भावना होगी, वो पूरी होते देर नहीं लगती, आप उसकी पूर्ति का अनुभव करेंगे। ये शांति स्तंभ में ना बस 18 जनवरी को उनका स्मृति दिवस मनाया जाता है। सब ये यहाँ की चार बातें हैं, बाबा का कमरा, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल और बाबा की झोपड़ी, ये दिखाया गया है। उसके बाद दादी प्रकाशमणि जी मुख्य प्रशासिका के रूप में हुई 1969 से लेकर 2007 तक, और इनके शासनकाल में इस इंस्टीट्यूशन ने बहुत बहुत वृद्धि की और इसमें ही लगभग इतने सारे देशों में ब्रांचेस हुए, पांचों कॉन्टिनेंट में के अंदर, और उस समय तक लगभग 110 देश में ये संस्था फैल चुकी थी। और इस प्रकार से ये चलता रहा। ये दादी प्रकाशमणि जो पीछे देख रहे हैं राइट साइड में, इधर दीदी मनमोहनी जी, इन दोनों की जोड़ी ने, इन्हें हंसों की जोड़ी जैसे कहा जाता था, इन दोनों का ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन था पूरे विश्व भर में इस संस्था का बहुत एक्सपेंशन हुआ। देखिए कहा जाता था तन दो हैं प्राण एक है, क्योंकि इतनी बड़ी संस्था को, वो भी बहनों की संस्था को विशेष करके संभाल के रखना और एक्सपेंशन, और ये हमारी मुख्य मुख्य यज्ञ की वरिष्ठ दादियां हैं, ये सब उनकी सहयोगी भुजा हैं, और ये आठ दादियां यहाँ पर आपके सम्मुख बताई गई हैं, अलग अलग इन सबके नाम। मधुबन में, और जैसे बताया 1974 में पहला यहाँ से डेलीगेशन विदेश में गया, और उसके बाद से वहां से मधुबन, जब वहां ब्रांचेज हुए तो वहां से ये फर्स्ट डेलीगेशन विदेशी भाइयों का बहनों का आया हुआ है, जिन्होंने परमात्मा को पहचाना और इस प्रकार से अपना ईश्वरीय ज्ञान में पदार्पण किया। ये माउंट आबू का ओम शांति भवन है, इसका भी कल आप जाएंगे अवलोकन करेंगे, और वहाँ अलग अलग प्रकार की कॉन्फ्रेंसेज और ये सब होती रहती हैं। वहाँ का एक दूसरा कॉम्प्लेक्स है माउंट आबू का ज्ञान सरोवर, ये ज्ञान सरोवर जो हमारा एकेडमी कॉम्प्लेक्स है जिसे एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड कहा जाता है, ये ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है हमारा। ये एक पिछड़ा इलाका है आबू आदिवासी, यहाँ ये आवश्यकता महसूस की गई कि यहाँ पर इतने मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो इन आदिवासी जनता के उसके लाभार्थ एक ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 120 बेड का वहाँ पर खोला गया है, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी के साथ, जिसमें ऑल पैथीज, एलोपैथी, आयुर्वेदी, होम्योपैथी, ये सब फिजियोथेरेपी, नेचुरोपैथी आदि हर चीज उपलब्ध है। ये तो डायमंड हॉल जिसमें आप बैठे हैं, ये शांतिवन का डायमंड हॉल है, जिसके अंदर देख ही रहे हैं आप कितना विशाल डायमंड हॉल है ये। ये दादी प्रकाशमणि जी के साथ, दादी प्रकाशमणि जी ने 2007 में देह त्याग किया, उनकी स्मृति में सामने ही प्रकाश स्तंभ बना हुआ है, ये प्रकाश स्तंभ आप अवलोकन करते ही होंगे रोज। और वर्तमान समय दादी जानकी जी जो कल शाम को भी आए थे और परसों भी उद्घाटन में, ये मुख्य प्रशासिका है, और जो 101 वर्ष की आयु जिनकी है, और इस आयु में भी कल रात आपसे मिल करके ये हमारे ऊपर माउंट आबू कॉम्प्लेक्स में वहाँ पर गए हैं और वहाँ पर सेवा कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग कोई भी संस्था की जो डेवलपमेंट है उसके मैन पावर पर डिपेंड करती है, तो कुमारियों को प्रशिक्षण देते हुए ये किस प्रकार से ब्रह्मा कुमारियाँ नई कैसे डेवलप हों, वो पूरा उसकी शिक्षा ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय देता रहा है। और वर्तमान समय ऐसी लगभग 25,000 से अधिक बहने हैं जिन्होंने अपना जीवन भी इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया हुआ है। जन जागृति की भी विशाल सेवाएं होती रहती है। ये दादी हृदय मोहनी जी सह मुख्य प्रशासिका है, वर्तमान समय अभी दिल्ली में है हमारा, वहां पर ओआरसी ओम शांति रिट्रीट सेंटर है, और बड़े सौभाग्य की बात है कि इनके द्वारा हम अब वर्तमान परमपिता परमात्मा शिव से मिलते हैं इनके द्वारा। ये तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, जब ब्रह्मा बाबा थे ब्रह्मा बाबा के तन में शिव परमात्मा आते थे तो हम उनसे मिला करते थे भगवान से, दादा लेखराज यानी प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू, और उनका जब देह त्याग हुआ उसके बाद से ये तन मुकर्रर है दादी हृदय मोहनी जी का, इनके थ्रू सब हम सब बच्चे परमपिता परमात्मा से मिलन मनाते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं। ये अव्यक्त बाप दादा यानी कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा और साथ में अव्यक्त ब्रह्मा बाबा दोनों कैसे इस तन में आते हैं और बच्चों से मिलन मनाते हैं। इस प्रकार से यह है तो बहुत बहुत बड़ा, विदेशों में कैसी सेवाएं हुई, 140 से अधिक देशों में चल रहा है, लेकिन संक्षिप्त में ये एक सिंगल मैन की विजडम थी ब्रह्मा बाबा की, कि उन्होंने परमात्मा को पहचाना और इस प्रकार से इस संस्था को आज इस मुकाम तक पहुंचाया, जो लार्जेस्ट वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड है। और ये बहुत गौरव की बात है कि हम सब इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। आप सब भी आए हैं, आपका अभिनंदन। ओम शांति।